नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरात्वेषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा श्री श्री वृंदावन चंद्र श्री गौर नित्याय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन सिंह चक्र के शरण में प्रभुपाद के इस अद्भुत वेदिक कल्चरल सेंटर इस्कान पुणे में नरसिंह चतुर्दशी के महोत्सव में आप सबका स्वागत है। वैसे सातवां स्कंद श्रीमद् भागवत का परीक्षित महाराज के प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न भी ऐसा गंभीर है कि भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप है। असुरों का संहार करा के देवताओं का भगवान पक्षपात करते हैं और ये प्रश्न बहुत बड़ा भारी प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में पूरा सातवां स्कंद है। सिद्धांत क्या स्थापित होता है कि नहीं, एक असुर बालक हिरण्याकश के पुत्र प्रहलाद के लिए साक्षात भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया, आप कैसे कहोगे पक्षपात करते हैं? एक आंसर है, पूरा फुल आंसर है। इंद्र का रक्षा कर दिया, वृत्रासुर को मरवा दिया, पक्षपात करते हैं भगवान। और उत्तर क्या है? हिरण्याकश जैसे असुर के बेटे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव अवतार लेकर आए तो पक्षपात कहां हुआ? दैत्य के लिए अवतार लिया कि नहीं लिया? तो पक्षपात नहीं है ना इसका मतलब। और फिर सिद्धांत ऐसे कहते हैं भगवान किससे पक्षपात नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, ये बिजली है ना, ये किसी से पक्षपात नहीं करती है, लेकिन माइक्रोफोन में साउंड को बढ़ा रही है, कूलर में हवा को फैला रही है, बल्ब में बिजली फैला रही है, एसी को ठंडा कर रही है, हीटर को गर्म कर रही है, इसमें बिजली का दोष है क्या? इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं, यंत्र का अंतर है। यंत्र का अंतर है मीन्स डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन ए मशीन। ऐसे ही अंतःकरण के यंत्र के अंतर से भगवान का व्यवहार अलग नजर आता है। अंतःकरण का यंत्र मतलब जैसे मन की भावना है वैसे भगवान का व्यवहार होता है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, पानी एक ही जाता है खेत में, आम मीठा रसीला आम बनता है, करेला कड़वा बनता है, नीम कोड़ा होता है, नींबू खट्टा होता है, इसमें पानी का दोष है क्या? जैसा जिसका बीज है वैसा उसका प्रभाव है। तो असुरों के अंदर जब असुरी भाव राजोगण होता है तो वो अपना काम करते हैं, जब सात्विक होता है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो गुणों से हमारा स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुसार भगवान हमारे से बढ़ता, लेकिन भगवान करते सबका भला है। वो शत्रु का भी भला करते हैं, मित्र का भी भला करते हैं, उनका कोई ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। तब बड़े अच्छे उदाहरण दिए कि भगवान को कैसे भी कोई भजे लेकिन उसका भला ही होता है। सातवें इसका स्कंद में 15 ही अध्याय है, छोटा स्कंद है। और कभी ऐसे माना जाता है कि भागवत का एक विषय जो ऊती है, ऊती अथ कर्म वासना, ऊती की माना होती है कर्म वासना। ऊती वैसे ऊती कहते हैं कपड़ा भुनने को, जैसे कपड़ा भुनते हैं ना, जो क्लाथ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तीन धागा ऐसा फिर तीन धागा ऐसे फिर जैसा कपड़ा बनता है, ऐसे ऊथी का मतलब हमारे शरीर कैसे बनते हैं, 84 लाख जोनियां कैसे बनती हैं, तो कर्म वासनाओं के आधार के ऊपर बनती हैं। तो कर्म वासनाओं को तीन में विभाजित की जाए, असुरी कर्म वासनाएं, पांच अध्यायों में हिरण्यकश्यप का वर्णन है असुरी कर्म वासनाएं, पांच अध्यायों में देवी कर्म वासनाएं प्रहलाद महाराज का वर्णन है, पांच अध्याय में मानवी वासनाओं से पांच अध्याय में वर्णाश्रम की व्यवस्था है। ऐसे अगर सातवें स्कंद को देखेंगे तो पांच पांच अध्याय में असुरी वासनाएं हिरण्यकश्यप की। प्रवचन बहुत अच्छा करता है, कोई अमर नहीं है लेकिन मैं अमर बनना चाहता हूं, ये हिरण्यकश्यप का दृष्टिकोण है। तो ये वासनाएं जो कर्म वासनाएं अथवा ऊती को कह, ऊती का दूसरा नाम है कर्म वासनाएं। तो आज हम प्रहलाद महाराज के दैवी गुणों में उसके प्रचार, एक दूसरा एक सिद्धांत प्रचार के लिए अच्छा है। भगवद गीता में भगवान जब कहते हैं कि मेरी ये भगवद गीता की दिव्य शिक्षा श्रद्धालुओं को देना, श्रद्धालुओं को मत देना, उसका प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके पिता ने पूछा तुम कहां से सीख के आए, नहीं बताया। उनके दोनों गुरुजनों ने पूछा कि कहां से सीख के आए, नहीं बताया। और ये अपने क्लासमेटों ने पूछा, उनको बता दिया कि मैं नारायण के शिष्य नारद का शिष्य हूं और उसने मेरी माँ को दिया, गर्भ में मैंने सम सीख लिया। तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि अश्रद्धालु को नहीं बताने, प्रभुपाद ने अश्रद्धालु, प्रहलाद महाराज ने अश्रद्धालु हिरण्यकश्यप को नहीं बताया और न ही छंड और अमर को बताया, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं थी। उनको और ही कहा कि जिसको जो संसार के बंधन में उसको क्या पता कि ये कोई अपने प्रयास से थोड़ी कोई भगवान की कृपा सम, उनको तो सीधा उत्तर दिया ही नहीं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि अश्रद्धालुओं को, ये महाभागवत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अश्रद्धालुओं को नहीं बताया, केवल अपने क्लास फेलोस को बताया। तो प्रहलाद महाराज का जो प्रार्थना अलग है, प्रचार अलग है। तो हम आज प्रहलाद महाराज के प्रचार को पढ़ते हैं जो वो असुर बालकों को दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज का प्रचार दो फ्रंट पे है, एक असुर बालकों को दे रहे हैं और सबसे बड़े हिरण्यकश्यप जो शक्तिशाली है उसको भी प्रचार कर रहे हैं, उसको भी प्रचार कर रहे हैं और बालकों को भी प्रचार कर रहे हैं। तो जो बालकों को प्रचार है छठे अध्याय में, सातवें स्कंद के छठे अध्याय में, उसका पहला श्लोक पाठ करते हैं, आइए। और ये अच्छा, पूरा सातवां स्कंद नारद ऋषि के मुख से प्रवाहित हो रहा है, जो एक भागवत पुरुष है, अपनी परंपरा का आचार्य है, और श्रवण कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर और राज्यसभा सारी, पूरी राज्यसभा में। अब जब ये पक्षपात का प्रश्न आया तो नारद जी ने, तो सुखदेव महाराज ने कहा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, आपके पितामह युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछा था नारद जी से वही मैं आपको उत्तर देता हूं। तो कंटिन्यूटी ऐसी होती है कि पक्षपात भगवान नहीं करते हैं। तो नारद ने कब पूछा था, बोले शिशुपाल की जब आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश हुई तो युधिष्ठिर तो उठ के कहा देव ऋषि योगियों को जो गति नहीं मिलती है ऐसे असुर को कैसे मिल गई। और तब नारद जी ने ये पूरा सातवां स्कंद वही सभा में बोला है, ये सातवां स्कंद नारद युधिष्ठिर संवाद है सारा, जैसे तीसरा चौथा स्कंद विदुर मैत्रीय संवाद है। तो ये दोनों महाजन है, नारद भी महाजन में आता है कि नहीं, नारदो कपिलो, और धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज है। तो महा दो महाजनों के बीच में ये बात हो रही है, मेरे सामान्य बात नहीं है। दो महाजन आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करता है, भगवान सबसे संभाव है और सबका हित ही करते हैं। तो नारद के ये शब्द हैं, श्री नारद वाच एवं दैत्य, ये कहां से आ गया, नहीं सातवां हो गया, छठा नहीं, छठा छठा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरे तप्रज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वम अर्थदम। अब प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को इकट्ठा किया है और क्लास में प्रवचन कर रहे हैं बालकों को बिठाकर। क्या कह रहे हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञ, कुमार अवस्था से ही आचरण करना चाहिए। प्रज्ञा शब्द कहां से? भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा जो है वो प्रज्ञा ये शब्द है। प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि सत्य को ग्रहण करने के मार्ग में चलने वाली हो। प्रज्ञा बुद्धि का इस तरह है कि बुद्धि के बहुत नाम है, जैसे एक नाम बुद्धि का मति है, एक बुद्धि का नाम प्रज्ञा है, ऐसे बुद्धि को रितंबरा भी कहते हैं, जो भगवान में परिपूर्ण रूप से रक्त हो जाए, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बुद्धि के अलग अलग स्तर है। तो यहां पिछला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है प्रज्ञा का अर्थ इंटेलिजेंट। प्रज्ञा, इस प्रज्ञा का मतलब बुद्धि का सामान्य, एक सामान्य बुद्धि भगवान सबको देते हैं, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, ये बुद्धि तो पशु पक्षी के पास भी है, लेकिन बुद्धि योग सबके पास नहीं है, वो राइट रिजर्व है, किसी किसी को भगवान देते हैं जिसको योग की समझ है। बुद्धि योग सबके लिए नहीं है, बुद्धि सबके लिए, तो बुद्धि और बुद्धि योग में अंतर है। ऐसे सामान्य बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर है। प्रज्ञा का मतलब जो बुद्धि सत्य को ग्रहण करने के रास्ते में चलने वाली हो। इसे इस प्रज्ञा में का क्या लक्षण है? तो वो प्रज्ञा है। और कौमारम आचरित का मतलब बचपन से ही आचरण करना चाहिए। 5 साल से श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरु के आश्रम में जाकर और आचरण करना चाहिए। और दूसरी लाइन में लिखा है क्या आचरण करना चाहिए? धर्मान भागवतान इह, इह बहुत मुख्य शब्द है। इह का मतलब इस जगत में जीते जी। इसलिए हम कहते हैं शास्त्र में भागवत धर्म जीते जी का है, मरने के बाद का नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जीते जी का धर्म है। यह का मतलब अभी इसी वक्त तत्काल जो चाहिए सो करो, ये मतलब इन दिस लाइफ अभी जीते जी। भागवतान धर्मान क्या है? जो धर्म स्वयं भगवान ने दिया है, भागवत धर्म उसको कहते हैं जो भगवान ने दिया है। इस भागवत धर्म का विशेष वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक है। उस पूरे को नव योगेंद्र का जो निमि महाराज को उपदेश है उसका नाम है भागवत धर्म। उसमें शब्द है भागवत धर्म, ये शब्द आया है। वो निकालना श्लोक पड़ा है आपके मोबाइल में, मैं वहां पर जाऊं। अब देखो इसमें भी उसके बाद धर्म भागवता में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में है भागवत धर्म श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये नवदा भक्ति भागवत धर्म। श्री प्रभुपाद भागवत धर्म इज दिस। और भागवत धर्म का अर्थ ये बहुत बड़ा, क्योंकि वेदों को, वेदों में 2 धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो निवृत्ति है वो साधु संन्यासी के लिए, प्रवृत्ति अग्रस्त के लिए। लेकिन भगवान भागवत धर्म देते हैं जो सबके लिए। भागवत धर्म का अर्थ यह है कि भगवान की सेवा करो। वो भगवान की सेवा मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी पक्षियों भी कर सकता है। जैसे राम जी की सेवा जटायु कर सकता है, या कृष्ण की सेवा में गाय भी है हिरण भी है। तो ये भागवत धर्म में मानव तो मानव, पशु पक्षी को भी अधिकार है भगवान की सेवा करने का। तो भागवत धर्म की परिभाषा ये है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे राजा की सेवा मंत्री से लेकर झाड़ू निकालने वाला सब करते हैं, राज की सेवा करने का अधिकार सबको है। ऐसे भागवत धर्म में भगवान की सेवा करने का अधिकार सबको है। वैसे जो दूसरा धर्म है जैसे वर्ण आश्रम धर्म है तो उसमें हर एक को अपने वर्ण का काम करना है, लेकिन भागवत धर्म में इसलिए वर्ण, इसलिए 200 धर्म बताए गए हैं भगवदगीता में। भगवदगीता में 2 स्वधर्म है, एक शरीर का स्वधर्म, एक आत्मा का स्वधर्म। शरीर का स्वधर्म अलग हो सकता है लेकिन आत्मा का स्वधर्म एक है और उसको भागवत धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म भगवान ही देते हैं, धर्मात् साक्षात भगवत परिणाम। तो भागवत धर्म भगवान देते हैं। तो भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, इसका मतलब भक्ति के मार्ग के ऊपर बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। धर्मान भागवतान इह किसके लिए, तब कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। तदपि अधुर्वम, अधुर्वम ध्रुवम का मतलब अटल, अधुर्वम का मतलब क्षण भंगर है, ये तो रहने वाला नहीं है ज्यादा, लेकिन अर्थदम बड़ा काम का है, अर्थदम का मतलब इज वेरी यूजफुल, चाहे है टेम्पररी लेकिन बड़ा काम का है। अब ऐसा ही भागवत धर्म से दूसरा श्लोक लेके देख सकते हैं, 11:2 हरे कृष्ण। अब देखें यह दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अब दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे लगेगा दुर्लभ है मानव जन्म, लेकिन अर्थधम कैसे है वैसे, अधुर्वम कैसे क्षण भंगर, यह अधुर्म हो गया, और अर्थधम कैसे है तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शनम मतलब भगवान के भक्तों का संग। तो भागवत धर्म कौन सिखाएगा, भागवत के भगवान के भक्त सिखाएंगे, तो मुख्य अंग हो गया भक्तों के भक्तों का संग। और ये कौन कह रहा है, ये नवी महाराज कह रहा है, नव योगेंद्र को कह रहा है कि इस तरीके से ये हमारे को बहुत बड़ा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, और इसलिए अत आत्यंत क्षेम प्रच्छामी, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि सबका आत्यंत क्षेम अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, सबका सबसे अच्छा, तो वो क्या कहेंगे कि भागवत धर्म। मैं आपको भागवत धर्म बताने जा रहा हूं, तो भागवत धर्म या डिवोशनल सर्विस इज अल्टीमेट बेनिफिट। अल्टीमेट बेनिफिट है भागवत धर्म, तो दुर्लभ है मानव जन्म, पहले तो दुर्लभ है मानव जन्म को, दुर्लभ समझना भी बहुत लोगों को आता नहीं है। एक श्लोक व्यंग के रूप में कहते हैं, भुंक्ष्व मां दया करो दुर्बुधे पर अनम दुर्लभम शरीराणी पुनः पुनः, संस्कृत का श्लोक है व्यंग में, भूखे खाओ दुर्बुधे मूर्ख पर अनम दुर्लभम, पराया माल मुफ्त में नहीं मिलता है बार बार, शरीराणी पुनः, ये शरीर तो बार बार मिलता है, इसमें क्या है, शरीर बार बार मिलता है, पराया माल खाने को बार बार नहीं मिलता है, इसलिए दबा के खाओ। भुंक्ष्व दुर्बुधे, हे दुर्बुधि खाओ, पर अनम दुर्लभम शरीराणी पुनः पुनः, तो यह कहते हैं शरीराणी दुर्लभम। तो आजकल दुनिया में लोग खाने के पीछे लगे हैं, शरीर समझते हैं बाद में मिल जाएगा, फिर इसमें क्या रखा, ये दुनिया उल्टी है। इसको कहते हैं इस वक्त कॉन्शियसनेस लोगों की बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है पूरा। कल हम कहीं बता रहे थे, घर इंपॉर्टेंट है या घर में रहने वाला मालिक, लेकिन घर की कीमत ज्यादा है या मालिक की, घर महंगा है और मालिक की कोई माना नहीं है, मालिक को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन घर तो 2 करोड़ रुपए का है और मालिक को बेचारा 20,000 रुपया मुश्किल से कमाता है। अच्छा जमीन इंपॉर्टेंट है या किसान, लेकिन जमीन महंगी है किसान सस्ता है। देखो हमने कितनी मर्यादाएं गलत करके रखी है, इंपॉर्टेंट आदमी होना चाहिए कि घर होना चाहिए, आदमी किसान इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जमीन, जमीन महंगी है, इसके ऊपर फिर एक हंसी की बात आ रही है। आदमी बड़े सेठ होते हैं ना, अपने घर की महिमा कहते हैं, हमारा घर तो छोड़ो, हमारा टॉयलेट भी 25 लाख रुपए का है। अंदर जाते सारा इलेक्ट्रोनाइट है, कितना वेट में गए, कितने वेट में आए, सब समाचार देता है। तो एक गांव वाला बैठा था, बोला आपका 25 लाख का है, लेकिन हम जहाँ टॉयलेट में जाते हैं वो कल प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिकी और रोज हम ऐसी जगह चेंज करते रहते हैं। तुम्हारे से तो हमारा 1 लाख गुना ज्यादा महंगा है, ऐसा नहीं भाई, सस्ता है। पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। पहले वैदिक सिस्टम में लोग अपने घर का खाते थे और बाहर जाते थे सोच के लिए, अब बाहर से घर के आते हैं और घर में ही सोच कर। सारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि नहीं, सब कल्चर उल्टा हुआ है कि नहीं उल्टा, सारा कल्चर उल्टा हो गया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से भागवत धर्म हुआ, आप जाके पूछो बड़ो इस उम्र में थोड़ी हरे कृष्ण, जब बूढ़े हो गए तब जपना, जो उल्टा है कि नहीं, पूरा लोगों की कंसेप्ट एग्जैक्टली उल्टी है कि नहीं। अब ये भागवत पुरुष कह रहा है कि बचपन से भगवान की भक्ति शुरू करना चाहिए, और लोग क्या कहते हैं, अरे अभी थोड़ी दिन है भक्ति की, आप क्या देखा आपने। और नारद ने ये कैसे, किसको ऐसे सिखाया जाके, दक्ष के पुत्रों को, मत फंसना दुनिया में, यहीं से साधु बन जाओ। दक्ष को अच्छा नहीं लगा, तो ये दुनिया वाले सब दक्ष की तरह समझते हैं, हम दक्ष हैं, लेकिन नारद समझता है मूर्ख है। तो ये भागवत धर्म की है, ये बचपन से ही इसको शुरू करना चाहिए। मानव जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, और उससे ज्यादा दुर्लभ सत्संग है। तो मानव जन्म का महत्व समझना चाहिए, ये कोई सामान्य नहीं है, मिल जाए तो उसका सही लाभ ले लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने इस श्लोक में श्री प्रभुपाद का तात्पर्य में विशेष रूप से है कि बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए। और इस धर्म का प्रभुपाद ने तुलना की है भगवद गीता के कौन से श्लोक से, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो, तो वहां कौन सा धर्म है, भागवत धर्म, उसको बुद्धि योग भगवान ने बोला है। ददामी बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग देता हूं, इसका मतलब बुद्धि योग से मेरे पास आओगे, इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो ये भागवत धर्म के स्वल्पमस्य त्रायते, इसका उदाहरण कौन सा है, अजामल, थोड़ा सा ही नाम का आभास लिया तो मृत्यु के पास से बच गया, स्वल्पमस्य धर्मस्य का उदाहरण अजामिल है। और बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, थोड़ा सा भी इस रास्ते में चले तो कोई नुकसान नहीं, हमेशा लाभ ही है। और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में दूसरा है, प्रहलाद महाराज ने ही भागवत धर्म को कहा है कि सर्वणम कीर्तनम, ये भागवत धर्म है, ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इसको भागवत धर्म कहते हैं कि नवदा भक्ति, इसका मतलब भक्ति भागवत धर्म है। और फिर प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं भागवत धर्म एक्सट्रीमली इजी बना दिया है कल युग में चेतना महाप्रभु। और तब भागवत धर्म की परिभाषा प्रभुपाद जी करते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व गत्यन्तरम, ये भागवत धर्म की श्री प्रभुपाद ने यहाँ परिभाषा लिखी। तो कितनी भरी भाषाएं हमारे को भागवत धर्म की मिल गई, अभी स्वल्पमस्य धर्मस्य एक, और नवदा भक्ति शरवणम दो, और तीसरी बहुत सरल जो सब कर सकते हैं, हरे नाम एव केवलम। तो ये तीनों भागवत धर्म है, इस तीनों को यहां भागवत धर्म का। अब भागवत धर्म में क्या प्राप्ति होगी, दूसरा श्लोक अगर वो पूछे कि भागवत धर्म से मिलेगा क्या, तो प्रहलाद महाराज ये दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पाद उपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मीश्वर स्वयं। भागवत धर्म के द्वारा पुरुष इह उस व्यक्ति को उस दैट पर्सन विष्णु पाद उपसर्पणम, वो भगवान के विष्णु के शरण में पहुंच जाता है, भगवान विष्णु के चरणों का शरण उसको प्राप्त होता है। भागवत धर्म भगवान विष्णु के चरणों का शरण प्राप्त कराता है। तो भगवान विष्णु के शरणों में क्या है, यद एष सर्व, जो सब प्राणियों से प्रिय, सर्वभूतानां प्रिय आत्म ईश्वर सुहृत, तीन विशेषण है, सर्वभूतानां प्रिय सबसे प्रेम करता है। कितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं, सबसे सर्वभूतानां सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आइटम है जो नहीं मिले तो आदमी जी नहीं सकता है, हवा, एयर, राइट, दो मिनट भी नहीं जिएगा और फ्री में सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही। कितना बड़ा प्रेम करते हैं भगवान हमसे कि इतनी बड़ी कॉस्टली कमोडिटी, जो अस्पताल में जाएं और आईसीयू में किसी को एक घंटा ऑक्सीजन लगाएंगे तो 5,000 रुपया एक घंटे का लगाएंगे, और इस हिसाब से भगवान ऊपर से बिल भेजे तो सारे कंगाल हो जाएंगे, और मुफ्त में 24 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं और भगवान की स्वच्छ वायु को दूषित कर रहे हैं। कितना भगवान ने अच्छी, बहुत धीर समीरा जमुना तीरा, धीर समीरा, बहुत सुंदर हवा बह रही है और हमने उसको कैसा कर दिया। आपके तो पता नहीं पुणे का क्या पता है, हमने कानपुर में कहा कि आप कानपुर से घूम के आओ शाम को और सफेद रुमाल से अपना मुंह साफ करो तो रुमाल कैसा हो जाएगा। किसने काला, तो कालाश कहां से उतरी, अपने मुंह से, इसका मतलब हमने अपना मुंह काला किया। कैसे किया, हमने किया, किसने किया, हमने किया, किससे किया, वायु को प्रदूषण करके, तो सभी अपना मुंह काला कर रहे हैं असल में। नहीं सही बात है भाई, अगर मुंह साफ करोगे, अगर रुमाल काला हो गया तो कहां से काला होते, मुंह से, तो अपना मुंह काला किया ना, कैसे किया, प्रदूषण करके किया कि नहीं किया। और भगवान ने ये हवा मुफ्त में सबको दी है कि नहीं दिए। दूसरी कौन सी चीज है वो नहीं मिले, अगर 2-4 दिन तो आदमी मर जाएगा, पानी, और बगैर पंप के, बगैर पाइप के, बगैर बिजली के समुद्र से बादल और बादल से बरसात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और भगवद गीता में इस श्लोक को प्रभुपाद ने तब उद्धृत किया जब किसी ने उसको बोला कि 5,000 साल पुराना भगवद गीता की अभी क्या आवश्यकता है, तो प्रभुपाद के अनाद भगवती भूतानी प्रजनाद संभव, अरे भाई बरसात के बगैर अन्न नहीं होगा और अन्न के बगैर कोई जीता नहीं रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं हम अन्न खाते ही नहीं है, हम पशु खाते हैं, हम उससे पूछते हैं कौन से पशु खाते हैं, शेर खाते, बोले नहीं, तो क्या खाते हैं, बोले भैंस बकरी, में वो क्या खाती है, लोग सब घास खाती है, तो तुम रिकंडीशन सेकंड हैंड माल खा रहे हो। वो तो रिकंडीशन सेकंड हैंड हुआ कि नहीं हुआ, हम तो फर्स्ट हैंड फल फूल खा रहे हैं और जो घास खाने वाली है उसका मांस खा रहे, तो सेकंड हैंड रिकंडीशन माल खा रहे, तुम कौन सा फर्स्ट हैंड नहीं खा रहे हो। फिर ऐसे लोगों को हम पूछते हैं कभी कि भाई दादा बादा कोई ध्यान तो हो गया ना तुम्हारे परिवार का, बोला हुआ तो सब परिवार में, मोर मृत्यु सर्वत्र। तो फिर शमशान घाट में जाके अग्नि संस्कार करने के बाद कुछ उनकी अस्थियां कटते करते हैं, मालूम है हड्डियां, वो अपने दादा बाबा के भी घर में नहीं लाते, शंकर जी के मंदिर में टांग के आते, मालूम है मंदिर में रख के आते। बोला क्यों, बोला कहीं दादा भूत बन के घर में ना आ जाए। तो जिसने घर बनाया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी हड्डियां मंदिर में और मुर्गे और बकरे की हड्डियां फ्रिज में, उससे डर नहीं लगता है। ये लोगों का हाल देखो, लोगों की प्रकृति को देखो, उधर हड्डियां अंदर पैक करके रखते हैं, उधर डर नहीं लगता है, और बाप की हड्डियों से डर लगता है, उसको मंदिर से सीधे ही ले जाएंगे ट्रेन में उठा के गंगा में बहा के आएंगे। कितना लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हुई है कि नहीं है। कि लोगों को क्या हो गया है। कोई भी धर्म की बात करो, इसको छोड़ो, अब दूसरी बात करो, तो ये नहीं सुनेंगे। आप कितना प्रयास करो तो आपको शाबाश है कि सुबह भी सुना, अभी भी सुन रहे हो, लेकिन कथा सुनने वाले मिलते नहीं, बहुत मुश्किल काम। दुनिया बिल्कुल उल्टे रास्ते पे चल रही है, ये बहुत दुख की बात है। दूध वाला गली गली में बोलता है, भैया दूध ले लो, भैया दूध ले लो, और शराब के दुकानों में लाइन में खड़े होते हैं, भैया दे दो दे दो। बुद्धि है लोगों को बने, और दूध वाले से पूछते हैं इसमें पानी तो नहीं मिलाया, और शराब में खुद ही पानी डाल के पीते हैं। देखो इन्हें, ये जो प्रज्ञ नहीं है उनका हाल ये है। विष्णु कैसे हमसे प्रेम करते हैं, और फिर सबको खाना तो खाना ही पड़ता है। और आज तक दुनिया में कोई ऐसा आविष्कार अभी तक नहीं किया जिसमें घास डालो मशीन में वो दूध बाहर निकल गया है। गाय को घास खिलाओ और दूध आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा। और एक दाना भी गेहूं का, चावल का कहीं मशीन से नहीं बन सकता है, ये तो धरती से उगेगा। और एक दाना 3 महीने में 1,000 होके वापस आएगा, इतना रिटर्न कहीं और से मिलता है दुनिया में? ये जो पृथ्वी रिटर्न देती है, कोई बैंक का इतना रिटर्न है? 1 दाने के 1,000 दाने और 3 महीने में, और वो अन्न, और भगवान कहता है वो मैं पैदा कर, बरसामी निग्रामी चाहे, ये बरसात बरसाऊं मेरी मर्जी, नहीं बरसाऊं तो मेरी मर्जी। 3 साल पहले एक तो बरसात आ गई मार्च में, और सारा गेहूं का फसल काला हो गया, और फिर इतने बड़े खिले ओले गिरे वृंदावन में, एक क्रिकेट के बाल जितने, और गाड़ियों में डेंट पड़ गए, और छत टूट गए, और फिर नेपाल में भूकंप आया। तो कवि ने कहा, पहले बरसा फिर ओले, अब धरती क्यों डोले, क्या हो गया भोले। ये प्रलय कहां से आ रही है? ये तो प्रलय का वातावरण हो गया ना। बरसाऊं मेरी मर्जी, कभी गलत टाइम पे बरसाऊं तो सबको सत्यानाश हो जाए। तो कितना प्रेम करते हैं, ये टाइम पे हर चीज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बिजली का बिल देता है भगवान, के सूर्य का बिल कभी नहीं दिया है, सबको कितना बड़ा प्रकाश दे रहा है एक ही सूर्य। और फिर ये दिल हमारा जो धड़क रहा है, अंदर बैठ के भगवान इसको दूसरे महीने माँ के गर्भ में चलाना शुरू किया है, और जब तक सांस लेते हैं तब तक चलता रहता है, हम सो जाते हैं ये सांस चलता रहता है, कितना बड़ा दयालु है, सब काम कर रहा है। और ये भी सबसे बड़ी और भी ध्यान से समझाने की है, घर में भोजन पचा पकाने के बाद तो आप लोग किचन को साफ करती हैं ना माता जी, साफ करना पड़ता है कि नहीं? अब भगवान कहते हैं कि यहां तुम खाते हो, इसके बाद गले से नीचे उतरने के बाद तुम्हारा उसके ऊपर तो कोई अधिकार है नहीं। अब यहां के बाद मैं उसको पचामी अन्नम चतुर्विधम, और उसके बाद अंदर सफाई मैं करता हूं, एक थैली में एक चीज, दूसरे थैली में दूसरी चीज, कितना काम करता हूं, इतना सारा मुफ्त में तुम्हारा काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तो इसलिए कहा क्या, सब सर्वभूतानां प्रिय, सबसे प्रेम करते हैं भगवान, सबकी जो आवश्यकता है सुविधा है उसको ऐसा अच्छी तरह से सबके लिए ये है। और फिर दूसरा लिखा क्या, आत्म ईश्वर, आत्मा का ईश्वर है, आत्मा का ईश्वर है, स्वामी है। इसका अर्थ हुआ कि हम उसके सेवक हैं, उस तो इसमें डर लगता है, वो सेवक है। तब एकदम दूसरा शब्द कह दिया क्या, सुहृद, आपका शुभ चिंतक भी है, शुभ चिंतक भी। इसके तात्पर्य में कौन सा श्लोक प्रभुपाद ने कोट करना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक। आधा श्लोक पहले तो भगवान ने ऐसे कहा आत्म ईश्वर मैं, तो सब डर गए, बोला नहीं, सुहृद सर्वभूतानां, आप सबका शुभ चिंतक हूं, आप सबका शुभ चिंतक हूं। शुभ चिंतक को प्रभुपाद क्लासिफाई कैसे करते हैं, एक होते हैं मित्र, एक होते हैं संबंधी, एक होते हैं सुहृद। मित्र आप आओगे तो आएगा, संबंधी आप करोगे तो करेगा, लेकिन सुहृद आप करो या न करो लेकिन वो आपका भला करेगा ही, आपको सुखी देखना चाहेगा ही, उसको सुहृद कहते हैं। सुहृद संसार के अंदर एक साधु संत गुरु होते हैं जो भला चाहते हैं, एक माता होती है जो पहले होती थी, भगवान प्रभुपाद ने यहां लिखा है पहले माता सुहृद होती थी, लेकिन अब बच्चा जन्म से पहले ही मार देती। अब बहुत बड़ा ये है, दो बहुत बड़े क्रुएल्टी की एक्सट्रीम पे घिनौने पाप, एक गऊ हत्या और एक भ्रूण हत्या, फेटिसाइड और स्लॉटर ऑफ द काउज, ये दुनिया में कहीं शांति कभी हो नहीं सकती। ये तो बहुत सबसे बड़े घिनौने पाप सोच समझ के समझदार लोग कर रहे हैं, बेवकूफ नहीं कर रहे, समझदार लोग कर रहे हैं। भगवान सुहृद है। ये भागवत धर्म हमारे को ऐसे भगवान के शरण में ले जाता है जो सबसे प्रेम करता है, सबका स्वामी है और सबका शुभ चिंतक है। तो भागवत धर्म का ये फल है। और इसका श्लोकों का तात्पर्य, सीधा पहला श्लोक है भोक्तारम यज्ञ तपस्या, और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सुहृद का मतलब भगवान का कोई हमसे प्रेम करता है तो हमको भी अपना भगवान के साथ भूला हुआ संबंध पुनः स्थापित करना चाहिए। और संबंध के अंतर्गत प्रभुपाद जी हमारे दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य और माधुर्य भाव का उल्लेख करते हैं तात्पर्य में, कि वात्सल्य दास्य ये हमारे भगवान के साथ भाव है, इनको हमें प्रिया पुनः स्थापित कर लेना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं कि तो सबको मालूम ही, आप तो यहां बहुत शास्त्र का अध्ययन करते हैं, चेतन चैतन्य में जहां लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं तो उनका उद्देश्य कोई धर्म स्थापना करना या असुर संहार करना नहीं, वो तो अपने परिकरों को लाते हैं और केवल दास्य सखा वात्सल्य और मधुर रस का पोषण करते हैं, और उन अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करके निमंत्रण देते हैं इन रस के भक्तों को, आइए आइए आप भी इस तरीके से इन भक्तों के अनुयायी बन जाइए और मुझसे अपना संबंध स्थापित कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य, इसलिए प्रचार की दृष्टि से कहते हैं कि इस दुनिया में प्रेम करना सबको पड़ता है, लेकिन कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है उसमें यह सिखाया जाए कि किससे प्रेम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अभाव है। और सभी प्रेम में धोखा खाते हैं और परेशान होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके प्रेम करना सिखाते। भाई दुनिया में सबका बंधन क्या है? बंधन है संबंध, बेटे का बंधन है, मित्र का बंधन है, पत्नी का बंधन है, प्रेमी का बंधन है। भगवान कहते हैं यही संबंध मुझसे कर लो, तुम्हारे बंधन खत्म। जो तुम्हारा एक तरफ, इसलिए कहते हैं कभी ताले में एक ही चाबी होती है, एक तरफ घुमाते हो तो बंद हो जाती है, दूसरे तरफ घुमाते हो तो खुल जाती है। ये दुनिया में तुम्हारे संबंध होंगे तो बंधन होगा, यही संबंध भगवान से होंगे तो खुल जाएगा बंधन, तो मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य ये है, जो संबंध हमारे बंधन का कारण है वही संबंध भगवान के साथ जोड़ लो, ऐसा कोई और संबंध निभाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम सबको करना पड़ता है और प्रेम का पाठ कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ये सबसे बड़ी समस्या। इसलिए महाप्रभु ने पांचवा पुरुषार्थ क्या बताया, प्रेम पुमार्थो महान। तो प्रेम की, इसलिए प्रभुपाद जी कभी नहीं कहा कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं, क्या कहा, आई एम टीचिंग दी साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, भगवत प्रेम का विज्ञान सिखा रहा हूं। ये प्रभुपाद का प्रचार, एक जगह का प्रभुपाद, अगर मैंने कहा होता इनको कि मेरा धर्म तुम्हारे से महान है तो ये लोग कब से मेरे को यहां से भगा दिया होता। मैंने कहा नहीं, आई एम टीचिंग यू द साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। अभी साइंस का मतलब है कि विज्ञान, अब फिजिक्स साइंस है, अब फिजिक्स किसी को पढ़नी है तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाएगा। अगर आपको लव ऑफ गॉड सीखना है तो मेरे पास आओ, तो इसलिए सभी अपने आप आ जाते हैं। प्रभुपाद से और किसी ने पूछा कि सब मंदिरों में, गर्जा घरों में, मस्जिद में बूढ़े लोग जाते हैं, आपके साथ ये नौजवान क्यों इतने सारे हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया, भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज में नौजवान क्यों जाते हैं? बोला एजुकेशन है, बोला मैं ही एजुकेशन दे रहा हूं इसलिए मेरे पास नौजवान है। सो स्टेट फॉर प्रश्न के अंदर, तो ये एजुकेशन है लव की, प्रेम की। भगवान निज वैराग्य विद्या भक्ति योग, ये चेतना महाप्रभु असल भगवान से प्रेम करना सिखाने के लिए क्या, चिराद चिराद अधितम निज गुप्त वित्तम, चिराद अधितम चिरकाल से जो नहीं दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, निज गुप्त वित्तम, निज का मतलब अपना पर्सनल, गुप्त का मतलब रहस्यमय, वित्तम का मतलब धन, निज गुप्त वित्तम, अरे निज गुप्त वित्त कैसा है, स्वनाम अमृतम, अपना नाम, अपना नाम चिरकाल से नहीं दिया गया था, इसलिए कहते हैं गोलोक एर प्रेम धन। ये गोलोक का भगवान का रहस्य है, ये हरे कृष्ण मंत्र सिर्फ चेतना महाप्रभु आते हैं तभी सबको मिलता है। अन्य युगों में दूसरे मंत्र होते हैं, कृष्णा है, हरे है, परमात्मा नमः, कुछ भी, हरे कृष्ण मंत्र नहीं होते हैं। इसलिए गोविंद महाराज ने लिखा हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र, ये तो गोपियां और राधा रानी गोलोक धाम में इस मंत्र से भगवान को वश में करते हैं, ये वहां का धन है, यहां का नहीं है। तो निज गुप्त वित्तम अति उदार गौरा, भगवान गौरंग महाप्रभु बहुत उदार है, पामर तामर को नहीं देखा, सबको कृष्ण क्या लाए, कृष्ण प्रेम लाए। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष देन ये है, कृष्ण प्रेम का प्रसाद। तो यहां भगवान प्रेम करते हैं, अधीश्वर है और सबका शुभ चिंतक है, और इसका प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सुहृद भगवान है और हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमको उनसे वापस कुछ क्या मांगते हैं भगवान हमसे, कुछ नहीं, इतना कुछ देने के बाद भी कुछ मांगते नहीं, मन भगवान को दे दिया है, वो मन मना की उदय उदाहरण वो है, मन मना, मन ये पहला मन मना मेरा ध्यान करो, दूसरा मन मना मेरे भावों को समझ के उसके अनुसार अपना आचरण करो, समझ जाओ मन भगवान के मन की बात को समझ जाना, और तीसरा मन मना भगवान को मन ही दे देना, उठाए तो उठो, बिठाए तो बैठो, चलाए तो चलो, उन्हीं के आश्रित हो जाना पूर्ण रूप से। मन मना भव मद भक्त, भव मद भक्त का मतलब मेरे भक्त बनो, इसका मतलब क्या है, भक्त की परिभाषा क्या हो गई, भक्त का सूत्र क्या है, मत कर्म किन मत परमो भत भक्त संग्रह, तीन चीजें हैं भक्ति का सूत्र, शरीर से मैं काम मेरे लिए करो, वाणी से मेरा गुण गाओ और मन से मुझे प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ, ये सूत्र है भक्ति का। यही वृंदासुर इसी बात को कह रहा है कि काया से आपकी सेवा करूंगा, वाणी से आपका गुण गाऊंगा और मन से आपका स्मरण करूंगा। तो भक्ति का सूत्र ये है, और श्री प्रभुपाद जी इसका उदाहरण कौन सा देते हैं, यशोदा मैया जब मंथन कर रही है, शरीर से कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही है, और मुख से गुणगान कर रही है कृष्ण का, और मन से ध्यान कर रही है, उठेगा मक्खन खाएगा फिर देखूं कैसे किसी घर में चोरी करने जाता है। तो मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान का गुणगान और शरीर से भगवान का कर्म, इसको कहते हैं भक्ति, ये भक्ति का सूत्र, इसको भक्ति का सूत्र कहते हैं कि तीनों चीजें। और हमारा हाल क्या है, आप तो भक्त छोड़िए, संसार का काम करते हैं सेठ के लिए, लक्ष्य गाड़ी लेना और प्रेम करते हैं परिवार से, तीन जगह टांगे हुए, कहां से सुखी होगी भाई, जिसके लिए काम करो उसी को पाना चाहो और उसी से प्रेम करो, ये है भक्ति, जिसके लिए काम उसी को चाहो उसी से प्रेम करो। और दुनिया का ये है कि काम करते हैं एक के लिए और लक्ष्य दूसरा और प्रेम करते हैं तीसरे से, इसलिए बेचारे तीन टांगों में सारे ही क्या बने हुए, त्रिसरा बने हुए। त्रिसरा एक सुना है आपने, जो 14,000 राक्षस जनस्थान के ऊपर रावण के थे ना, उसमें खर, दूषण, अकंपन और त्रिसरा, नाम ऐसे और भी है। खर उसको कहते हैं जो गधे है, समझाना से नहीं समझे उसको बोलते हैं खर, और दूषण उसको कहते हैं जो हमेशा दोष देखे कभी अच्छाई ना देखे, और अकंपन का मतलब जो काम पे नहीं लेकिन भगवान को देख के ऐसे कांप रहा था रावण के सामने, और त्रिसरा कहते हैं जिसका तीन सर, कोई बात एक सर से एक बात दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे, जिसका पता नहीं लगे क्या कर रहा है। तो ये त्रिसरा है बेचारे, सारे संसार वाले त्रिसरा है, एक के लिए काम करते हैं, दूसरा लक्ष्य और तीसरे से प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। इसलिए भक्ति बहुत सरल, भक्ति उस भक्ति के लिए ये तीन चीजें हैं। एक ये 11वें अध्याय का भगवद गीता के आखिरी श्लोक को भक्ति का सूत्र कहते हैं, तीन काम करो और दो मत करो, क्यों, दोनों डू एंड डोंट दोनों होते हैं, जैसे नाम जपो और चार नियम का पालन करो, ये डू और डोंट है। तो डोंट में क्या है, मत कर्म किन मत परम मत संग परम मद संग संग व्रजित, संसार के संग को त्यागो। और वहां तात्पर्य में लिखा है कर्मियों ज्ञानियों के संग से दूर रहो। तो क्या गालियां दें उसको? निर्वैर, बहुत सावधान शब्द है, उनका संग मत करो लेकिन दुश्मनी मत करो, वैर मत करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, ये भक्ति का और सूत्र है। वैर आपने किसी का रखा तो वो आपके दिल में आके बैठ जाएगा, तो भगवान के लिए जगह ही नहीं बचेगी। भाई जिससे आप द्वेष करेंगे वो तो आपके अंदर बैठा होगा ना। तो एक महात्मा कहते थे फ्री का, आपकी दिल में फ्री का बगैर रेंट के किसी को जगह क्यों देते हैं, और जिसको चाहते नहीं हो उसको दिल में क्यों बिठाते हो? इसको मैं, जिससे हम गुस्सा करते हैं नाराज करते हैं उसी को दिल में बिठा के रखते हैं। अरे उसको फ्री में काहे के लिए जगह दे दी आपने दिल में, निकालो उसको अंदर से, भगवान कहां रहेंगे? तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि निर्वैर, निर्वैर सर्वभूतेषु, ये भक्ति का सूत्र है। असंग निर्वैर, असंगता चाहिए लेकिन वैर भी नहीं चाहिए। इसका मतलब उन लोगों के साथ उनको प्रसाद देना है, बात करनी है, वो ठीक है, लेकिन उनसे कुछ लेना नहीं है, उनको देना है। वैर नहीं रखने का मतलब उनके ऊपर दया करनी, द्वेष नहीं करना। तो ये भक्ति का सूत्र है। तो भक्ति मन मना भव मत भक्तो मद याजी, मेरी पूजा करो। यजन पूजा करन, कैसे पूजा करना? याजी पूजन करना, कैसे मेरी पूजा करो? प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, मेरी पूजा करो। चेतन महाप्रभु की पूजा कैसे होती है? हरे कृष्ण मंत्र से, बहुत सिंपल, बस बैठ के आधा घंटा कीर्तन करो, भगवान की पूजा चेतन महाप्रभु होगी। सरल पूजा जिससे वो एकदम संतुष्ट हो जाएं, इतना सरल रास्ता है पूजा का। कोई षोडश उपचार पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, बस शुद्ध हृदय से भगवान के नाम का उच्चारण करो तो राधा कृष्ण की प्रसन्नता हो गई चेतन महाप्रभु। बहुत सरल है, राधा कृष्ण की उपासना का बहुत बड़ा विधि विधान है, लेकिन चेतना महाप्रभु अति उदार है। इसलिए चेतना महाप्रभु पूरे रशिया के अंदर, सारी चेतना महाप्रभु के गौर निताय का मंदिर एक ही राधा गोविंद देव जी का मंदिर, बाकी जहां जाओ गौर निताय अलग अलग नाम से। बहुत पति तपावन है, अति उदार है, और आसानी से पूजा होती है। और जगन्नाथ भी बहुत दयालु है, कुछ ज्यादा मांगते नहीं है और सबको खिलाते हैं, खिलाते रहते हैं, वो खिलाते रहते हैं बात, बड़े दयालु। 10,000 साल तक कलयुग में गर्ग संहिता लिखती है कि भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में पति तपावन रहेंगे। इसलिए आश्चर्य लगता है कि इस्कान की स्थापना में पहले भगवान जगन्नाथ भाग के यहां से प्रभुपाद के सहायता के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। इसलिए एक कहावत है जैसे भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, उसका एक अर्थ ये निकाला, कौन सा? कि जैसे गाय बछड़े को चाट के साफ करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के सारे दोष चाट के साफ करते हैं, जैसे नरसिंह देव प्रहलाद को चाट रहा है। लेकिन एक और भक्त वत्सल की परिभाषा है, जहां नया बछड़ा जाएगा गाय उसके पीछे जाएगी, जहां भक्त जाएगा भगवान उसके पीछे जाएगा, जहां जहां बछड़ा फिरे तहां जाए गाय। ये भक्त वत्सल की दूसरी प्राप्त, कोई नवजात ब्याई हुई गाय को लाना हो गाय नहीं आ सकती, बछड़े को उठाया और गाय पीछे चली आएगी। मानो मैं किसी ने इंदौर में हमको गाय दान दी बछड़े के साथ, अब ले कैसे जाएं? वो वैन के पीछे बछड़े को बिठा दिया तो गाय पीछे भागते ही अपने आप आए। तो जहां बछड़ा जाएगा वहां गाय जाएगी, जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएगा। प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका गए तो जगन्नाथ भागते हुए अमेरिका पहुंच गए। कितना बड़ा आश्चर्य है कि भगवान गए कि नहीं वहां, और कैसे प्रकट हुए सबने सुना है कि जगन्नाथ जी वहां कैसे प्रकट हुए, क्योंकि कलयुग में पति तपावन जगन्नाथ। एक यही है ऐसा विग्रह जो चल विग्रह है, बाकी सब अचल विग्रह होते हैं, हिलते नहीं है अपने आसन से, और ये तो बाहर निकल वाला मूर्ख नहीं आ सकते, मैं ही जाता हूं और क्या करूं दर्शन देने के लिए। और इसकी आंखें कैसी है, इसकी आंखों के ऊपर आईलिड है ही नहीं, चक्का डोला बोलते हैं वो, इसके आंखें 24 घंटा खुले हुए, कैमरा के ऊपर पर्दा होता ना, जो इसके सामने आया उसका फोटो निकल गया, फोटो निकल गया तो वो ओके हो गया उसके सामने कोई आ जाए, बस इतना है। बहुत उधर 10,000 साल तक दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ पति तपावन। गंगा 5,000 साल थी, अब गंगा पर्यटन स्थान हो गया। अब गंगा में लोग टूरिस्ट जाते हैं, अब गंगा का वो पति तपावन वाला प्रभाव नहीं रह गया। अब देखे बांध कितने बन गए, कितने बड़े डैम हो गए, कितना उस गंगा की धारा को पतला हो गया। अभी गंगा 5,000 साल हो गए, ऐसे गर्ग संहिता में लिखा है कि अब 10,000 साल तक जगन्नाथ बड़े बड़े दयालु, बहुत दयालु, अति उदार। ये दयालु तो इतने जगन्नाथ जी है, हमारे पहले संस्कृत मंदिर में कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसे ही बैठे होते थे। और प्रभुपाद जब यहां से कुछ साड़ियां ले गए तब उन्होंने कुछ उसका वस्त्र बनाया, ऐसे ही नो प्रॉब्लम है, तो उसी हालत में खुश। बड़े दयालु है, बाहर निकल के चले जाते हैं, पागल से पागल हो उसको भी प्रसाद खिला देते हैं। तो ये बहुत बड़े दयालु है। तो एक बार इंद्रदिन महाराज कह रहा था, एक साक्षी गोपाल वृंदावन से चल के और भक्त की साक्षी देने के लिए गए। प्रभुपाद के पीछे हजारों यहां से ठाकुर जी भाग के पूरी दुनिया में जगह जगह चक्र ऊपर स्थापित हो गए कि जहां भक्त जाएगा वहां भगवान भागते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उस भक्त के कार्य को पूरा, क्यों भक्त भगवान का कार्य कर रहा है तो कार्य तो भगवान को ही करना है। तो भगवत गीता का ये श्लोक याद करना चाहिए, निमित्त मात्र भव सब ऐसा काम भगवान कर लेता है, श्रेय भक्त को देता है। और प्रभुपाद को इस बात का अनुभव था। जब अभी 66 में लोगों ने पूछा कितने मंदिर, बोले हजारों मंदिर, सैकड़ों मंदिर और हजारों शिष्य कहाँ है, टाइम इज सेपरेटिंग, पहले से उसको दिख रहे, उनको दिख रहे थे, इसका मतलब ये सब होना है। तो ये जो भाव है मद याजी का, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो, सकृत कृष्ण प्रणामो, एक बार कृष्ण को प्रणाम किया जाए न पुनर्जन्म भवेत, पद्म पुराण कहती। और फिर कहती हैं अश्वमेध आदि यज्ञ करने के बाद हम नहीं कह सकते हैं क्या होता है, लेकिन एक बार कृष्ण के प्रणाम की तुलना नहीं की जा सकती। सकृत कृष्ण प्रणाम, एक बार प्रणाम करना। और प्रणाम की क्या विधियां हैं, एक है हाथ जोड़ना, एक प्रणाम होता है हाथ जोड़ने, जिसका मतलब है आज्ञा करो क्या करो। दूसरा प्रणाम में हाथ जोड़ने के साथ सर नीचे किया जाता है, उसका मतलब है मैं मेरे मन से नहीं सोचूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, आप आदेश भी देंगे और जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। और तीसरा होता है दंडवत प्रणाम, बोला मन तो मन, मैं शरीर से भी उठाऊंगा तो उठाऊंगे, खिलाऊंगे तो खिलाऊंगा, नहीं तो आपके चरणों में पड़ाऊंगा। तो ये प्रणाम के अलग अलग अंग है। ये छोटा प्रणाम ये हाथ जोड़ने वाला है, फिर सर झुकाने वाला है, और फिर दंडवत है। तो प्राय सब लोग हाथ झुकाते हैं, लेकिन पूछते हैं क्या करूं, लेकिन करते नहीं है। तो ये प्रणाम, प्रणाम के भी अंग है, ऐसे नेम है। साष्टांग प्रणाम भगवान को करना चाहिए पुरुष को, और माताओं को केवल पांचंग प्रणाम की विधि है। पंचंग प्रणाम है, षष्टांग प्रणाम माता नहीं कर सकती। पृथ्वी देवी कहती है स्त्री का वक्ष स्थल, भगवान की पूजा की सामग्री, ब्राह्मण का नीचे का स्थान धरती को नहीं अच्छा लगता है, ब्राह्मण आसन के ऊपर बैठना चाहिए, भगवान की पूजा का सामान किसी चीज के ऊपर रखा होना चाहिए, स्त्री का वक्ष स्थल धरती को नहीं लगना चाहिए। इसलिए नारी पांचंग प्रणाम करती, पुरुष को षष्टांग प्रणाम करना है, 6 अंग छाती भी लगनी चाहिए। और प्रणाम की भी विधि है कि विष्णु भगवान को प्रणाम अपने वाम भाग से करना है, और शास्त्र में लिखा है सामने से पीछे से सीधे तरफ से प्रणाम करने से पुण्य का क्षण होता है, पूर्ण क्षण होता है। पीछे से बहुत से लोग पीछे से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करना चाहिए ये विष्णु को, क्यों, हम भगवान की शक्ति है, भगवान की सारी शक्ति भगवान की लेफ्ट साइड में। देखें पंच तत्व को, राइट साइड में कौन है, दोनों विष्णु तत्व, लेफ्ट साइड में कौन है, दोनों शक्ति तत्व। तो हम भगवान की शक्ति है, हमको भगवान को लेफ्ट साइड से प्रणाम करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी एक बार देवी के मंदिर में ले गए, भक्त साथ गए, प्रभुपाद ने राइट साइड से प्रणाम किया, वापस आके भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी राइट साइड, बोला वो भी शक्ति हम भी शक्ति, शक्ति को शक्ति को शक्ति को, हम शक्ति हैं तो राइट साइड से प्रणाम करने के, विष्णु को केवल लेफ्ट साइड से करते, गुरुजनों को सीधा सर उनके चरणों में रखते। एक प्रणाम का भी विधि है, इसे प्रणाम का भी नियम है, विधि है कि प्रणाम करने का भी सिद्धांत है। फिर एक भक्त हमारा कहता था लेफ्ट साइड से इसलिए करते हैं, हमारा दिल है भगवान को कहते हैं, आप दिल में आके बैठ जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं तुम बड़े बुद्धिमान हो, दिल के ऊपर जेब रखते हो, इसके अंदर माल रखते हो, ये सब मेरे को दे दो। लोग बड़े होशियार है, दिल के ऊपर जेब बना दे, पैसे से इतना प्रेम करते दिल के ऊपर पड़ा रहे, तो उन्हें यही साइड हमारी तरफ कर लो। पहले बाहर से घंटी बजा के अंदर आते हैं ना, और फिर ये जो प्रणामी है ना, इसका नाम है प्रणामी, ये प्रणामी है इसको, इसका मतलब जो प्रणाम करता है ना, उस वक्त इसमें पुराने जमाने में ये तो कागज वाले नोट नहीं थे, तो सिक्का डालता था ना प्रणाम करते तो खड़क होता था, भगवान कहता कोई आया है, ऐसा उसको देख के आशीर्वाद ऐसे करते थे। अभी कोई नोट डालता है खड़का ही नहीं होता है। इसको इसका नाम ही प्रणाम है, प्रणाम करने के समय कुछ अर्पण करना चाहिए, ये नियम है। प्रणाम खाली नहीं होना चाहिए, भगवान के सामने, वैद्य के सामने, राजा के सामने, इन खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ये नियम है, कुछ भी मुट्ठी भर दाना फल फूल कुछ लाके अर्पण करना चाहिए, इसका नाम प्रणाम ही है। खड़का होता है तब भगवान देखता है, नहीं तो अपनी मौज में बैठा होता है। तो प्रणाम तो लिखना चाहिए, प्रणाम करना के समय ये सेवा कैसे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो ये चार जो प्रणाम की भी परिभाषा है, तो ये भक्ति के अंग है। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा को, और भागवत के तीसरे अध्याय के 25वें 28वें यस्य अहम् प्रिय ही आत्मा सुतच्च शकब गुरोः सुहृदो दैवम् इष्टम्। कि हमारे सुहृद कौन है उसकी बात करते हैं, भगवान ही हमारे सुहृद हैं, गुरु हैं ये। फिर प्रभुपाद जी उस सुहृद शब्द के लिए तीन चार जगह से कोट कर रहे हैं। अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम ऐन्द्रियैकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुःखम् अयतन्तः। भगवान का शरण लेना चाहिए, वही हमारा सुहृद है, स्वामी है, उसकी सेवा करनी चाहिए, जैसे अब कहा उसको मन लगाना चाहिए, सब करना चाहिए, तो फिर संसार में काम नहीं करना चाहिए। तब कहते हैं काय के लिए काम करते, बोलो सुख के लिए, भाई सुख के लिए काम करते हैं सभी लोग। किसी से पूछो काम किसके लिए करें, भाई काम किस लिए, पूछो लोगों से किस लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं ना, सभी लोग सुख के लिए काम करते हैं, बराबर। अब मैं उनसे कभी पूछते हैं, हम उनसे पूछिए कि भाई तुम्हें कौन सा सुख चाहिए, सुख आपके सुख की जो इच्छा है उसका कभी अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखो, व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस यू वांट, कैसी हैप्पीनेस चाहिए, कौन सी हैप्पीनेस मांगते हैं, एवरीडे, एवरीडे चाहिए ना, कब चाहिए सुख, हर समय चाहिए, राइट, कहां चाहिए, घर में चाहिए, दुकान में, बाजार में, मंदिर में, तब क्या जवाब आएगा,